हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब लोग अपने मोबाइल बंद कर दीजिए। हरे कृष्ण। आप सबका श्री बरसाना धाम में हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू एवरीबॉडी टू श्री बरसाना धाम। हरे कृष्ण। तो श्रील प्रभुपाद और वर्तमान आचार्य वृंदों की असीम कृपा से हम सब लोग यहाँ पर बरसाना में बैठे हुए हैं। रामचरण प्रभु, बिना श्री गुरु की कृपा से हम भगवान के धाम में नहीं प्रवेश कर सकते। टिकट निकाल के, हवाई जहाज़ का, ट्रेन का, खाने पीने का इंतज़ाम करके, रहने की व्यवस्था करके कोई भी धाम में प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि इस धाम की जो अधिष्ठात्री है वो श्रीमती राधा रानी है। उस धाम के स्वामी जो है वो श्री कृष्ण है, और श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण के कृपा के बिना, जो कृपा केवल गुरु की कृपा से प्राप्त होती है, उसके बिना हम धाम में दिव्य दृष्टि से आध्यात्मिक स्तर पर प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए सब लोग तीन बार हरि बोल कहकर श्रील प्रभुपाद और राधा कृष्ण का धन्यवाद कीजिए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जैसे वो हमारा स्वागत कर रही हैं, वैसे हमें भी उनको हरि बोल बोल का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि अनंत जन्मों के दिव्य सेवा कार्यों से, उसके प्रभाव से हम यहाँ आने के लिए वो हमें योग्य समझती है। हम तो योग्य नहीं है उसके, हमारे अंदर वो योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमारे हृदय में थोड़ी बहुत सेवा करने की इच्छा होगी, प्रामाणिक इच्छा, शुद्ध इच्छा, अणुमात्र क्यों न हो, लेकिन अगर शुद्ध और प्रामाणिक सच्चे हृदय की इच्छा हो, तो वो इच्छा को देखते हुए हमारे हृदय में जितने अनंत दुर्गुण हैं उसकी ओर दुर्लक्ष करके फिर भी वो हमें इस धाम में प्रवेश देती है, ये उनकी कृपा है। क्योंकि उनकी कृपा नहीं होती तो हम यहाँ पर शरीर से आएंगे, मन से भी आ सकते हैं, लेकिन आत्मा से नहीं आ सकते। आत्मा से यहाँ पर प्रवेश प्राप्त करने के लिए उनकी कृपा बहुत आवश्यक है। इसलिए हम बार बार, अनंत बार राधा और कृष्ण का, गुरु महाराज का धन्यवाद देना चाहते हैं, और हर दिन देना चाहेंगे। हर समय जब सेवा करने को जाएंगे तो हर समय उनका धन्यवाद करके आपको सेवा आरंभ करनी है। ये बहुत ही भाग्य की बात है, क्योंकि हजारों, लाखों, करोड़ लोग यहाँ पर आते हैं। ऐसे कहते हैं कि 7 करोड़ लोग एक साल में बरसाना में आते हैं, और उसमें से 90-95% लोग जो हैं वो आते हैं, दर्शन करते हैं, प्रसाद लेते हैं, कुछ रीति महारानी के पास सेवा करते हैं, थोड़ा दर्शन कर लेते हैं और चले जाते हैं। लेकिन ऐसे ही गिने चुने लोग जैसे आप जैसे हैं, उनको श्री जी महारानी यहाँ पर सेवा देती है, अपने निज भक्तों की, निज प्रियजनों की यहाँ पर सेवा देते हैं। तो ये परम भाग्य की बात है कि हमको धाम वास मिल रहा है, साथ साथ में धाम वासियों की और धाम की सेवा भी प्राप्त हो रही है। गुरु महाराज कहते हैं कि अगर धाम में आना है तो सबसे बेस्ट तरीका यह है कि वो भक्तों के संग में आ जाए, और उसके साथ साथ और भी एक बेस्ट तरीका यह है कि सबसे पहले धाम की सेवा करें, धाम वासियों की सेवा करें, धाम की और धामवासियों की कृपा प्राप्त करें, उनको संतुष्ट करके, और उस कृपा के बल के साथ फिर भक्तों के साथ में धाम के जो अलग अलग लीला स्थलियाँ हैं उनका दर्शन करें। तब वो धाम की जो लीला स्थलियाँ हैं उनका जो सार रूप का महत्व है, एसेंशियल इम्पोर्टेंस, वो हमारे समझ में आएगा। धाम का लीलाओं का सार जो है, उनकी जो शिक्षा है, उनका जो उपदेश है, वो हमारे हृदय में प्रवेश करेगा। इस तरह से प्रवेश करेगा कि हम उसको अपने कार्यों में अमल कर सकते हैं। वी कैन अप्लाई दैट रियलाइजेशन इन टू अवर प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस। जो व्यक्तिगत रूप में हम व्यवहारिक रूप में भगवान की सेवा करते हैं, उसमें वो आत्म साक्षात्कार की अनुभूति जो है उसको हम अपनी सेवा में उतार सकते हैं, जब हम इस माध्यम से धाम का दर्शन करें। इसलिए सब लोगों से विनती है कि धाम का दर्शन करने की ज़्यादा एंग्जाइटी मत रखना। अभी हम धाम का दर्शन करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्या करके हमारी जो सेवा है उसको करके तैयारी कर रहे हैं, हृदय की, मन की, आत्मा की, ताकि धाम का सारा जो सार जो है वो हमारे हृदय में अनुभूति के रूप में प्रकट हो। तो ये जो धाम जहाँ पर आप बैठे हैं, इतना दिव्य धाम है, जैसे हमारा भौतिक जगत है, भगवान ने ऐसा कहा है कि उनका भौतिक जगत जो है वो उनके सारे निर्माण के एक चौथाई है, 1/4 ऑफ द होल क्रिएशन, और 3/4 उनका जो निर्माण है वो दिव्य जगत है। इसमें बेसिक अंतर यह है कि इस जगत में जन्म मृत्यु होता है, बुढ़ापा बीमारी होती है, और उस जगत में जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा नहीं होता है। ये एक मूलभूत उसका अंतर है उसके अंदर। इस जगत में सब कुछ टेम्पररी होता है, सब कुछ क्षणिक है, वहाँ पर सब कुछ शाश्वत है, चिरंतन है। यहाँ पर जो भी होता है वो हम कभी भी हमारे साथ में कहीं भी ले जा सकते नहीं हैं, सब कुछ यहीं समाप्त हो जाता है। समय काल जो है, वक्त, उसका प्रभाव यहाँ पर रहता है भौतिक जगत में, और समय होते हुए भी उसका प्रभाव भगवान के दिव्य जगत में, वैकुंठों में नहीं होता है। यहाँ पर राक्षस होते हैं, उनका भगवान वध करते हैं, लेकिन भगवान के दिव्य धाम में कोई राक्षस नहीं है, सब भगवान के भक्त हैं। यहाँ तक कि जब भगवान को कोई युद्ध खेलने का या कोई लड़ाई करने का मूड आता है तो अपने कुछ भक्तों को वो यहाँ भेज देते हैं राक्षस के रूप में, और हृदय से लड़ाई होती है, दिल से वीर रस का आनंद लेते हैं। ऐसे कई प्रकार के अंतर हैं उसके अंदर। तो हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी लोक, ये 14 भुवन का एक हिस्सा है। पृथ्वी लोक, नीचे 6 पाताल लोक, ऊपर 7 स्वर्ग लोक, मिलकर 14 भुवन का एक ब्रह्मांड बनता है, जिसमें 4 मुख वाले ब्रह्मा हैं। गर्भोदकशायी विष्णु के नाभि कमल से उनका निर्माण हुआ है, और ये गर्भोदक सागर है, इसमें क्षीर सागर भी है, इसमें क्षीरोदकशायी विष्णु भी हैं, एक यूनिट है पूरा। और ऐसे अनंत यूनिट जो है, अनंत जो ब्रह्मांड है, वो महाविष्णु के शरीर के जितने छिद्र हैं, अनंत छिद्र, उन छिद्रों में से निर्माण होते हैं। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है भगवान के केवल भौतिक सृजन में विराजमान है। हाँ, केवल भौतिक सृजन है जहाँ पर जन्म मृत्यु लागू है। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड योग निद्रा में लेटे हुए महाविष्णु के शरीर के छिद्रों में से निर्माण होता है। ये लाइट इसलिए गई है कि आप सब लोग अपने आप को भूलकर भगवान की कथा में समरस हो जाएं, इसलिए अंधेरा हो गया। हरे कृष्णा। तो एक महाविष्णु और अनंत गर्भोदकशायी विष्णु, और महाविष्णु के अधिपत्य के अंदर जितना भी ब्रह्म लोक है, जितना भी निर्माण है, वो सब भौतिक जगत है। जैसे मैंने बताया वो 1/4 है। इसके बाद में विरजा नदी है, वो भौतिक और आध्यात्मिक जगत को अलग करती है। विरजा नदी, वो भी एक देवी है, गोपी है वो, गोलोक वृंदावन की। तो इसके आगे भगवान का दिव्य प्रकाश जो है वो फैला हुआ है, वो दिव्य प्रकाश सब जगह फैला हुआ है, लेकिन एक महत तत्व है, एक बड़ा बादल है जो हम देखते हैं वैसा बादल नहीं, बहुत विशाल बादल, जो ये सारे एक चौथाई जितना निर्माण है अनंत कोटि ब्रह्मांडों का उसको ढक देता है, और ब्रह्म ज्योति का प्रकाश यहाँ पर नहीं गिरता है, अंधेरा हो जाता है। फिर यहाँ के अंधेरे को निपटाने के लिए सूरज चंद्र ऐसे वस्तुओं का, मतलब ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना पड़ता है। ये बेसिकली ये विश्व जो है वो अंधकार में है। जब सूरज है तो प्रकाश है, सूरज का अस्त होता है तो अंधकार हो जाता है, जैसे अभी हो रहा है। तो वो महत्तत्व जो है बादल, उसकी छाया में पूरा एक चौथाई भौतिक निर्माण है, और उसके आगे ब्रह्म ज्योति दिखाई पड़ती है, प्रकाश। तो वहां पर कोई सूरज चांद की जरूरत नहीं होती। उस ब्रह्म ज्योतियों में, इस ब्रह्म ज्योति में जो सब जगह विराजमान है, उसमें अनंत वैकुंठ लोक जो है वो तैर रहे हैं। अनलिमिटेड वैकुंठ प्लैनेट्स आर फ्लोटिंग, और उसमें अनंत भगवान के जो विष्णु स्वरूप स्वरूप हैं, वो एक एक स्वरूप उस वैकुंठ को नियंत्रण करते हैं, और वहाँ पर भगवान के लिए बहुत ही ऐश्वर्य संपन्न वातावरण है। भगवान का ऐश्वर्य फैला हुआ है, लक्ष्मी देवी विराजमान हैं अलग अलग रूपों में, और वहाँ पर शांतरस और दास्य रस, यानी कि भगवान के ऐश्वर्य को समझते हुए, भगवान के भगवत्ता को समझते हुए सब भक्त लोग वहाँ पर उनकी सेवा करते हैं। लेकिन कोई भगवान के गले में गले हाथ डालकर खेलने के लिए बुला नहीं सकता है वहाँ पर, वहाँ पर ऐश्वर्य है, ऑ एंड रेवरेंस, आदरपूर्ण सम्मानपूर्ण व्यवस्था है वहाँ पर। उसके आगे जाएंगे तो भगवान के दिव्य निर्माण का एक और उत्कट हिस्सा आता है, मोर इंटेंस सिचुएशन। उसमें द्वारका धाम है, उसमें अयोध्या धाम है, और उसमें मथुरा धाम है। ये जो ऐश्वर्य भाव है ये अति और उत्कट तरीके से इन तीन धामों में वहाँ प्रकट होता है। सबसे पहले अयोध्या धाम है, जहाँ पर प्रभु रामचंद्र चिरंतन निवास करते हैं सीता जी के साथ, हनुमान जी के साथ, और उनके जो भक्त हैं वो सबके साथ में वहाँ चिरंतन निवास करते हैं, और अधिक उत्कट तरीके से ऐश्वर्य भाव का वहाँ प्रकट होता है। उसके आगे द्वारका धाम, जहाँ पर कृष्ण भगवान द्वारकाधीश के रूप में रुक्मिणी जी के साथ, अन्य पत्नियों के साथ चिरंतन निवास करते हैं, लीला करते हैं। और उसके आगे मथुरा धाम, जहाँ पर भगवान वासुदेव के रूप में रहते हैं, वसुदेव के पुत्र वासुदेव के रूप में रहते हैं, वहाँ पर भी ऐश्वर्य है लेकिन और उत्कट है। और इन सबके परे, इन तीन उत्कट ऐश्वर्य धामों के परे एक धाम है जिसका नाम है गौलोक धाम। विशेषता यह है कि ब्रह्म ज्योति के अंदर जो वैकुंठ है, और द्वारका, अयोध्या और मथुरा धाम जो है, ये सब में भगवान भगवान के रूप में रहते हैं। उनका भगवान होना सबको विदित है, सबको पता है, सब लोग उसकी अनुभूति करते हैं। भगवान भी ऐश्वर्य के भाव में रहते हैं। उत्कटता बढ़ती है लेकिन ऐश्वर्य तो वैसे ही रहता है। लेकिन गौलोक धाम की एक विशेषता है कि गौलोक धाम में भगवान अपने भगवान का जो पद है उसको त्याग देते हैं। मतलब भगवान होने से वो चुकते नहीं, भगवान तो है ही वो, लेकिन वो वहाँ पर भगवान की तरह कार्य नहीं करते। जैसे कि अगर कोई ऑफिस में कोई बड़ा अफसर है, वो कंपनी का मालिक है, तो कंपनी में वो कंपनी के मालिक की तरह बर्ताव करता है, लेकिन घर जाता है तो फिर वो कंपनी का मालिक करके बन के घर जाता नहीं है। वो घर में एक पिता, एक माता, एक भाई या एक पति या किसी का पुत्र इस भाव में जाता है, और वहाँ पर अपना जो मालिक होने का जो रुबाब है वो वहाँ पर वो जताता नहीं। उसी तरह से भगवान का गौलोक धाम ये निज धाम है, मतलब खुद का घर है उनका, बाकी सब उनके अलग अलग प्रकार के कार्य करने की जगह है। और गौलोक धाम में सबसे पहले वो अपना भगवान का जो ऐश्वर्य व्यवहार है उसको छोड़ देते हैं, और वहाँ पर फिर लोग उनके मित्र बन जाते हैं, कुछ लोग उनकी सखियाँ बन जाते हैं, कुछ लोग माता पिता बन जाते हैं, और माता पिता के वात्सल्य का वो अनुभव करते हैं, मित्रों के साक्ष्य का अनुभव करते हैं, गोपियों के माधुर्य का अनुभव करते हैं, लेकिन ऐश्वर्य का कहीं भी लवलेस नहीं होता है। पूरा धाम ऐश्वर्य संपन्न होने पर भी भगवान के व्यवहार में कभी भी ऐश्वर्य प्रकट नहीं होता है, और वो सच्चे रूप में वहाँ पर अपने सखाओं का साक्ष्य प्रेम, अपने माता पिताओं का वात्सल्य पुत्र के रूप में, और अपनी सखियों का श्रृंगार माधुर्य प्रेम को अनुभव करना चाहते हैं, तो वो भगवान का दिव्य धाम है। और उसके अंदर एक और दिव्य धाम है जो माधुर्य धाम के अंदर है, जिसका नाम है औदार्य धाम, वो है चैतन्य लोक, गौरांग महाप्रभु का धाम, जहाँ पर भगवान बड़े प्रेम से चैतन्य महाप्रभु के रूप में नित्य संकीर्तन का आनंद लेते रहते हैं अपने भक्तों के साथ। ये गोलोक धाम का ही हिस्सा है। तो ये दिव्य गोलोक धाम भगवान का निर्माण है और अनादि काल से, कभी इसकी एक घटना कभी हुई ये कोई नहीं कह सकता है, इसका कोई आदि नहीं है। फिर भी एक समय पर सृष्टि के रचयिता जब अपने धाम में बैठे हुए थे, वहाँ पर एक रास मंडल के पास बैठे हुए थे और उसके पास में शतश्रृंग नाम का पर्वत था, बहुत विशाल दिव्य पर्वत, जो आगे जाकर पृथ्वी पर गोवर्धन के रूप में प्रकट हुआ। उसके पास बैठकर, रास मंडल पर बैठकर भगवान ने आनंद लेने की इच्छा की, ए डिजायर टू एंजॉय। और जैसे ही उनकी इच्छा हुई, तुरंत उनके बाएं भाग से एक सुंदर देवी का निर्माण हुआ। वो देवी का जो प्रकाश था वह अनंत चंद्रमा के समान था। उसने मूल्यवान रत्न परिधान करके रखे थे, मालती मालाओं, फूलों की माला पहन के रखी थी, रत्नों की माला पहन के रखी थी, उसके वस्त्र अग्नि के द्वारा शुद्ध और पुनीत हो गए थे, उसके मुख में स्मित हास्य था और उसके द्वारा दर्शन होने वाले जो दांत थे वो बहुत दिव्य प्रकाश मानते हैं। रत्न सिंहासन पर वो भगवान के बाजू में विराजमान हो गई और वही राधा रानी के रूप में प्रसिद्ध हुई। राधा रानी का गोलोक धाम में निर्माण या प्राकट्य जो है वो इस प्रकार से हुआ। तो जैसे ही कृष्ण भगवान ने उनका दर्शन किया तो उनका मन प्रफुल्लित हो गया और उनका दर्शन करते ही प्रफुल्लित होने के कारण उनका प्रफुल्लित मुख को देखकर राधा रानी का सौंदर्य और बढ़ गया। उसको देखकर भगवान के मन में और उनका उनके साथ में आनंद लेने का भाव बढ़ गया। और जैसे राधा रानी के मन में कृष्ण भगवान की सेवा करने के भाव उत्पन्न हुआ तो तुरंत वहां से वो भाग गई फूल बिनने के लिए, जो बिनकर वो कृष्ण भगवान की सेवा करने की इच्छा उसके मन में प्रकट हुई, इसलिए उसका नाम राधा हुआ। रा इसलिए कि वो रास मंडल में उनका निर्माण हुआ, प्रकट हुई वो, और धा इसलिए क्योंकि वो धावमान, वो भाग गई, मतलब धावणे मराठी में कहते हैं ना भागना, इसलिए वो धान लग गया। कई इसके नाम के और अनंत अर्थ हैं, लेकिन गौलोक धाम में जब उनका निर्माण हुआ तो उसका ये अर्थ है उसका। तो इस तरह से शास्त्र में लिखा गया है, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्र प्रमाण। कृष्ण जो है वो शक्तिमान है और राधा रानी उनकी शक्ति है। कृष्ण परम ब्रह्म स्वरूप हैं और राधा ब्रह्म रूपिणी है, कृष्ण की स्वरूप शक्ति है। बृहत गौतमीय तंत्र में कहा गया है, कृष्ण भगवान बलराम जी से, जो उनके भाई हैं, तो लोग वृंदावन में उनसे संभाषण कर रहे हैं। इसका संदर्भ जीव गोस्वामी द्वारा लिखे गए संदर्भों में भी आता है। जीव गोस्वामी ने 6 संदर्भ लिखे, भक्ति संदर्भ कहते हैं उनको। उसमें बृहत गौतमीय तंत्र का ये जो श्लोक है इसका उल्लेख आता है। तो उसमें लिखते हैं, सत्वम तत्वम परतत्वम च तत्वत्रयम अहम किल त्रितत्व रूपिणी स अपि राधिका मम वल्लभा। इसमें भगवान बलराम जी को बता रहे हैं कि मैं 3 तत्वों का स्वरूप हूँ। वो 3 तत्व क्या है? एक है सत्व, एक है तत्व और एक है परत्व। सत्व का मतलब है, सत्व का मतलब है कॉज यानी कारण, तत्व का मतलब है इफेक्ट यानी परिणाम, और परत्व का मतलब है जो व्यक्ति इस कारण और परिणाम के परे है, वन हु इज बियॉन्ड द कॉज एंड इफेक्ट। और कृष्ण कहते हैं कि मैं इन 3 का स्वरूप हूं, लेकिन मेरी राधा रानी त्रितत्व रूपिणी है, वो इन तीनों तत्वों को धारण करके, मेरी शक्ति को धारण करके अपने आप को प्रकट करती है, इसलिए उनका नाम त्रितत्व रूपिणी है। और वो मेरी बहुत प्रिय है, राधिका मम वल्लभा, वल्लभ का मतलब है बहुत प्रिय है। ब्रह्मणा प्रार्थितः सम्यक संभवामी युगे युगे, ये बहुत समर्पक वाक्य भगवान ने बताया है। क्या आप जानते हैं कि भौतिक जगत में ब्रह्मा जी होते हैं, भगवान के दिव्य धाम में ब्रह्मा जी नहीं होते। भौतिक जगत में जब भगवान के अनंत विस्तार होने के पश्चात, जैसे कि कृष्ण भगवान बलराम जी विस्तार होते हैं, पहले कृष्ण भगवान राधा रानी में विस्तारित होते हैं, फिर बलराम जी चतुर्व्यूह में विस्तारित होते हैं, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव, और संकर्षण और एक संकर्षण में विभाजित होते हैं, फिर वो संकर्षण नारायण में रूपांतरित होते हैं। नारायण तक जितने व्यक्ति हैं, दिव्य व्यक्ति, वो सब वैकुंठों में और भगवान के दिव्य धाम में हैं। लेकिन नारायण का विस्तार महाविष्णु में होता है, और महाविष्णु ये पहले व्यक्ति हैं, पहले पुरुषोत्तम यानी पुरुष अवतार हैं जो भौतिक जगत के इंचार्ज हैं। बाकी जितने गर्भोत्तकशायी विष्णु हैं, जितने अनंत विष्णु हैं, वो सब उनका विस्तार है। तो वहाँ तक, महाविष्णु तक सब लोग दिव्य लोक में, महाविष्णु से आगे भौतिक जगत का नियंत्रण करने के लिए वो निर्माण होते हैं। इस भौतिक जगत में राक्षस लोग हाहाकार मचाते हैं और पृथ्वी को कष्ट देते हैं, पृथ्वी का पाप का भार बढ़ाते हैं। तो इसमें होता यह है कि ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के नेता हैं, प्रथम जीव हैं, तो ब्रह्मा जी जाते हैं क्षीर सागर में, उसके किनारे खड़े होकर सारे देवताओं को लेकर, पृथ्वी को लेकर पुकारते हैं विष्णु को। तो ब्रह्मणा प्रार्थितः सम्यक, यानी कि भगवान को ब्रह्मा जी बार बार पुकारते हैं जब संकट आता है, और उनकी प्रार्थना को उत्तर देने के रूप में, हे बलराम जी, मैं अनंत ब्रह्मांडों में बार बार आते रहता हूँ, संभवामी युगे युगे, ऐसे भगवान बता रहे हैं बलराम जी को। तो जितने भी गोप हैं वो सब भगवान कृष्ण के द्वारा निर्माण हुआ उनका, और जितनी भी गोपियां हैं वो सब राधा रानी के अंग से निर्माण हुई है। राधा रानी के अंग से केवल गोपियां नहीं, लेकिन सारी देवियां भी उत्पन्न हुई है। जैसे लक्ष्मी देवी, जिसको महालक्ष्मी कहा गया है, सबसे पहले लक्ष्मी को महालक्ष्मी कहा गया है, या भाग्य लक्ष्मी कहा गया है, ये भी राधा रानी के शरीर से निर्माण होता है। फिर उनका रूपांतर, ये जो महालक्ष्मी आई वो वैकुंठ में नारायण के पास रहती है, फिर उनका रूपांतर जो है वो राजलक्ष्मी में होता है, कि राजलक्ष्मी जो है भौतिक जगत में रहती है, वो सारे राजाओं को धन देती है, ऐश्वर्य देती है। फिर वो राजलक्ष्मी जो है वो मर्त्य लक्ष्मी के रूप में उसका विस्तार होता है, और वो सब हमसे ऐसे गृहस्थों के साथ में रहती है, उसका नाम है चंचला देवी। वो हमारा साथ बहुत कम समय निभाती, जब तक नारायण के भजन और भक्ति हमारे हृदय में नहीं पैदा होती है, तब तक वो यहाँ से वहाँ भागती रहती है। हाँ, मराठी में कहते हैं हुलकावणी, हुलकावणी मतलब क्या, धोखा देती रहती है, हमको लगता है मिलेगी अभी, लेकिन वो जैसे मिलने आती है तो फिर दूर भाग जाती है। तो ऐसे चंचला देवी मृत्युलोक में निवास करती है। फिर राधा रानी के अंग से कृष्ण की पत्नियों का निर्माण होता है, मतलब स्वकीय भाव में, यानी कि ऑफिशियल पत्नी के रूप में जो भगवान की सेवा करती हैं। बाकी राधा रानी के जो गोपियां हैं वो सब परकीय भाव में हैं, वो अनऑफिशियल सब उनका रिश्ता होता है। ये जो रिश्ता है, सत्यभामा, रुक्मिणी, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, जम्बुवती, ये सब स्वकीय भाव में भगवान की सेवा करती हैं, और वो भी राधा रानी का विस्तार स्वरूप हैं। और पार्वती देवी, ये भी राधा रानी का विस्तार है, क्योंकि राधा रानी भगवान की अंतरंगा शक्ति है। वो जब विस्तार होती है पार्वती रूप में तो उसको बहिरंगा शक्ति कहते हैं। फिर कृष्ण और राधा रानी के दोनों की तरफ से हम सबका निर्माण होता है, और हम सब कौन है, तटस्था शक्ति, हम लोग बीच में है उसके। अनंत जीवों का भगवान निर्माण करते हैं, और इन संदर्भ में बताया गया है कि भगवान केवल आनंद का अनुभव करने के लिए अनंत जीवों में, हम और आप में, सब में विस्तारित होते हैं, क्योंकि वो प्रेम चाहते हैं, प्रेम संबंध चाहते हैं, उसमें आनंद लेना चाहते हैं। और शुद्ध प्रेम का आनंद जो है वो केवल जीव दे सकते हैं, जड़ वस्तु प्रेम का अनुभव ना कर सकती है ना अनुभव दे सकती है। चेतन वस्तु जो है वो चिरंतन होती है, उसका कभी मृत्यु नहीं होती है। और चेतन वस्तु के द्वारा आनंद की प्राप्ति हो सकती है जब चेतन वस्तु का संबंध भगवान से होता है। तो हम तटस्थ शक्ति हैं, हम चाहे तो भगवान की बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में अपना कार्य कर सकते हैं और दुख भोग सकते हैं, या तो भगवान की अंतरंगा शक्ति राधा रानी के चरणों में आश्रय लेकर दिव्य आनंद का अनुभव कर सकते हैं और अपने दिव्य स्थिति को अनुभूति कर सकते हैं। तो ये है राधा रानी का निर्माण जो गौरांग गोलोक वृंदावन में हुआ। अभी ये जो धाम है इसकी कहानी ऐसी है कि जब हमारे ब्रह्मांड में जब पृथ्वी को बहुत पापों का भार सहना पड़ा तो ब्रह्मा जी के पास गई, फिर ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर, वो भी त्रस्त थे और भूमि देवी गाय के रूप में थी, वो सब गए क्षीरसागर। वहाँ पर उन्होंने जो हमने कल यज्ञ किया ना पुरुष सूक्त, वो गाकर उन्होंने ब्रह्मा जी ने सबके नेतृत्व के रूप में विष्णु जी का ध्यान आकर्षित किया। वो समुद्र के अंदर थे और वहाँ से उन्होंने केवल ब्रह्मा से संपर्क किया। लेकिन गर्ग संहिता में कथा आती है कि भगवान शिरोदक्षाय विष्णु ब्रह्मा जी पृथ्वी और सारे देवताओं को लेकर गौलोक वृंदावन गए और वहाँ पर गौलोक वृंदावन में जाते ही कृष्ण भगवान सबके सामने प्रकट हो गए, जो गौलोकेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, इन विष्णुओं को भी निर्माता है, उनके भी पिता हैं वो। और जाते ही सबके लिए आश्चर्य हुआ कि वो जो शिरोदक्षाई विष्णु थे उन्होंने तुरंत भगवान को दंडवत प्रणाम किया। केवल प्रणाम ही नहीं किया, वो उनके अंदर विलीन हो गए। सबके लिए आश्चर्य हुआ। फिर कुछ देर बाद में अनंत सूर्यों के समान प्रकाशमान नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और वो भी कृष्ण भगवान के शरीर में विराजमान हो गए। फिर कुछ देर बाद में धनुर्धारी श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी के साथ में प्रकट हुए और वो भी अनंत तेज वाले राम और लक्ष्मण कृष्ण के अंदर विराजमान हो गए। और ये सब ब्रह्मा जी और भूमि देवी सब देवता देख रहे हैं। फिर कृष्ण भगवान वार्तालाप करते ब्रह्मा जी से कि हम आएंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे। और कैसे आएंगे बताते हैं कि आप सब लोग मेरे सेवा में अलग अलग अंश के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेना। और बताते भी हैं कौन कौन क्या क्या बनेगा, बड़ा लंबा बहुत सुंदर वर्णन है वो। और ये सब वर्णन कर रहे हैं तो अचानक वहां पर राधा रानी आ जाती है और सुनती है कि ये भी जाने वाले हैं, गौलोक छोड़कर पृथ्वी पर अवतार लेने वाले हैं और कुछ लीला करने वाले हैं। तो वो मूर्छित हो गई वहां पर तुरंत इस कल्पना से कि इनका विरह मुझे होगा, वो मूर्छित हो गई। तो सब लोगों ने उनको फिर सांत्वना देकर होश में लाया। तो भगवान ने उनसे वादा किया तो राधा रानी ने कहा कि अभी आप जाएंगे तो हम जी नहीं पाएंगे और हम आपके साथ में चल नहीं पाएंगे। बोले क्यों नहीं चल पाएंगे? क्योंकि वृंदावन, जमुना नदी और शतश्रृंग पर्वत जो वहां पर है, वहां पर उपलब्ध नहीं है, जिसको हम गोवर्धन कहते हैं। भगवान ने कहा कि आपकी इच्छा के लिए हमारे दिव्य धाम का एक हिस्सा 84 कोस का वो हम पृथ्वी पर भेज देते हैं, उसके साथ शतश्रृंग पर्वत गोवर्धन के रूप में जाएंगे और जमुना नदी भी यहाँ से वहां पर प्रवाहित होगी। जमुना नदी कैसे प्रकट हुई? जब राधा रानी ने अपने अंगों से गोपियों का निर्माण किया तो सारी गोपियों के साथ मिलकर राधा रानी के साथ कृष्ण भगवान ने वहां पर रास रचाया, रास मंडल पे। तो सभी गोपियों के राधा रानी के शरीर से दिव्य स्वेद, जिसको हम यहाँ पर हमारी भाषा में पसीना कहते हैं, तो पसीना जो है वो स्वेद का कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि तो स्वेद दिव्य होता है, पसीना जो है वो लौकिक होता है, उसमें बदबू होती है, उसमें गंदगी होती है, उसमें दोष होता है, उसको अपवित्र मानते हैं। तो उस दिव्य स्वेद जल जो राधा रानी और गोपियों के शरीर से प्रकट हुआ वो एक जगह इकट्ठा हो गया। तो राधा रानी बड़ी प्रसन्न हो गई, उसने उसका नाम जमुना दिया और उसको प्रवाहित कर दिया और वो गौलोक की शोभा बनी। गौलोक की अविभाज्य शोभा है जमुना देवी, जो जल के रूप में वहां विराजमान है। तो राधा रानी को भगवान ने कहा कि ये जमुना देवी अपने जल के साथ में, गोवर्धन अपनी शोभा के साथ, 84 कोस गौलोक का हिस्सा पृथ्वी पर प्रकट होगा। तो उस तरह से ये दिव्य धाम जो है वो पृथ्वी पर प्रकट हुआ हम और आपके लाभ के लिए। तो ये जो हिस्सा है वैसे अनंत है लेकिन लौकिक नाप के लिए 84 कोस है इसके पर इसका जो परिक्रमा है, और इसमें कई हिस्से हैं। इसमें प्रमुख जो वन है उसमें इसका वर्गीकरण ऐसे दिया गया है कि कुछ अधिवन है, कुछ वन है, कुछ प्रतिवन है और कुछ उपवन है। 4 प्रकार के कैटेगरी है और उसमें प्रधान जो है वो 137 वन है जिसका वर्णन शास्त्रों में दिया गया है, और उसमें 108 वन जो है वो कृष्णा और राधा रानी को बहुत प्रिय है, और उस 108 वनों में भी 12 वन जो है वो कृष्ण भगवान को अति अति प्रिय है। इन 12 वनों में से 7 वन जमुना जी के एक तरफ है और 5 वन जमुना जी के दूसरी तरफ है, ईस्ट और वेस्ट। और इन 12 वनों में भी श्री वृंदावन जो है वो कृष्ण भगवान को राधा रानी को अति प्रिय है, जहां पर भगवान अपना हृदय का अंतरंग जो आनंद है, जो लीला है, जो प्रेम संबंध है उसको प्रकट करते हैं। और इस वृंदावन के अंदर नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन और जमुना जी आती हैं। आज का जो वृंदावन हम सोचते हैं वो एक भौगोलिक ज्योग्राफिक लोकेशन है, जो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, 45 किलोमीटर दूर है, जो आज के हिसाब से सरकारी हिसाब से वो एक परगना है, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं उसको, डिस्ट्रिक्ट तो मथुरा है, वृंदावन एक टाउनशिप कह सकते हैं। लेकिन जो दिव्य वृंदावन है वो 20 कोस का है और उसके अंदर नंदगांव, जावट, बरसाना, गोवर्धन सब सम्मिलित है। इसलिए इस वृंदावन का जो वातावरण है ये भगवान का सबसे प्रिय वातावरण है, इसमें भगवान ने अति उत्कट रास का आनंद लिया है। और इसमें भी इस वृंदावन की जो रज है 84 कोस, जो ब्रज मंडल कहते हैं उसको, हाँ ये वृंदावन का मतलब भी ब्रजमंडल होता है और वृंदावन का मतलब वो वन भी होता है जो 20 कोस का है, जो भगवान को अति प्रिय है 108 और 12 वनों में से। और ये जो ब्रजमंडल है यहाँ पर एक विशेषता ये भगवान की, भगवान यहाँ पर पादत्राण नहीं पहनते, मतलब जूता नहीं पहनते, नंगे पैर घूमते हैं। ये सुनकर पृथ्वी देवी वहाँ पर बहुत हर्षोल्लासित हो गई थी क्योंकि उनको लगा उनका जो दुख था वो पूर्णता नष्ट हो गया। रोते हुए वहां गई थी, वह प्रफुल्लित होकर लौट के आई कि अभी भगवान के 2 चरण कमल जो है मेरे शरीर का अलंकार बनेंगे, सब जगह पर वो नंगे पैर घूमेंगे और मुझे आशीर्वाद देंगे, उनकी कृपा मुझे प्राप्त होगी, मैं पुलकित हो जाऊंगी, दिव्य आनंद का अनुभव करूंगी, उनकी सेवा कर पाऊंगी। तो ये जो भगवान के दिव्य चरण कमल है ये इस पूरे ब्रजमंडल के आभूषण है। और इसमें क्योंकि भगवान के चरण कमल लगे हुए हैं यहाँ की धूल भी जो है वो दिव्य है, वो कृष्ण प्रेम को देने वाली है। उस कृष्ण प्रेम को देने वाली धूल को प्राप्त करने के लिए, रज को प्राप्त करने के लिए सारे विष्णु के स्वरूप, सारे देवता, सारे देवियाँ सब यहाँ पर लालायित रहते हैं। सब भक्तगण, ऋषि मुनि, साधक, योगी, सब जग लोग जो है यहाँ के रज को, एक कर्ण को प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि इस कर्ण के अंदर वो रहस्य छुपा हुआ है जो प्रेम का रहस्य भगवान सबको बांटते हैं, वो प्रेम का रहस्य इस रज के कणों में छुपा हुआ है। और सब लोग भगवान के चरणों की रज प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ पर स्वयं जिनके चरणों की रज प्राप्त करने के लिए सभी ऋषि मुनि तपी ध्यानी देवता देवी विष्णु स्वरूप सब लालायित रहते हैं, वो स्वयं जाते हैं एक जगह पर रज प्राप्त करने के लिए, और वो ये बरसाना धाम है। यहाँ पर वो आते हैं जिनकी रज सब चाहते हैं, वो खुद अपनी हृदय के आनंद के लिए, दिव्य रहस्य को प्राप्त करने के लिए, रस को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर आते हैं और इस रज को अपने माथे पर लगाते हैं, न केवल माथे पर लगाते हैं इसमें लोटपोट भी हो जाते हैं, रोते भी हैं, यहाँ पर आकर कृपा याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके आनंद के लिए गीत गाते हैं, ऐसी जगह है। और इस जगह का जो उत्कट महात्म्य है उसको जानते हुए श्री भगवान कृष्ण ने यहाँ पर किसी भी राक्षस को नहीं आने दिया। किसी प्रकार की जो बाकी लीलाओं सब लीला भगवान की दिव्य है, ऐसे नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ की जो लीलाएँ हैं वो सभी दिव्य लीलाओं में से अति दिव्य लीला हैं, और सभी लीला उत्कट है लेकिन यहाँ की लीला अति उत्कट है। तो ये जो जगह है यहाँ पर ब्रह्मा जी ने 120,000 साल तपस्या किया, सत्ययुग के पहले 60,000 साल और सत्ययुग के अंत में 60,000 साल। 60,000 साल तपस्या करने के बाद में कोई भगवान की तरफ से प्रतिसाद नहीं मिला, फिर उन्होंने अपना कार्य आरंभ किया, सेवा करना शुरू कर दिया। सत्ययुग के अंत में फिर 60,000 साल तपस्या किया। जैसे मैंने कहा ना, भगवान के युग युग में अवतार के लिए उन्होंने संकट के समय प्रार्थना किया, लेकिन स्वयं के लिए भी प्रार्थना किया उन्होंने। ये तो पृथ्वी का भार कम करने के लिए प्रार्थना किया देवताओं को लेकर, लेकिन अपने उद्धार के लिए भी उन्होंने भगवान की प्रार्थना तपस्या किया है, दिव्य तपस्या। और 120,000 साल के अंत में भगवान ने उनको दर्शन दिया, तो भगवान ने उनको कहा क्या चाहते हो, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हम आपके चरणों के रज चाहते हैं। तुमने कहा ब्रज में चले जाओ। ब्रज यानी वो जगह, उसकी व्याख्या ऐसे की गई है जहां पर गाय निर्भय होकर आनंद से विहार करती है, ये ब्रज की व्याख्या है। भारत देश की व्याख्या भी वही है, जहां पर राधा कृष्ण के प्रेम में सब लोग रत रहते हैं, भा यानी राधा कृष्ण का प्रेम, उनके संबंध की जानकारी ज्ञान, उसमें जो रत रहते हैं वो भारतवासी, उस देश का नाम भारत है। और ब्रज वो देश है, मैंने कि भारत का भी वाक्य यही थी, क्योंकि यहाँ पर पूरे देश में सभी गायें सब जगह पर निर्भय होकर प्रेम से व्यवहार करती थी, और गो ही गो माता यही देश का धन था, होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ की जो ब्रज है उसको भगवान चाहते हैं, और सब लोग यहाँ पर ब्रह्मा जी शिव जी आकर तपस्या करते हैं। तो मैं कह रहा था कि यहाँ पर फिर भगवान ने कहा ब्रज में चले जाओ। भगवान ने कहा ब्रज, ब्रह्मा जी ने कहा ब्रज तो बहुत बड़ा है, कहाँ जाऊँ? तो उन्होंने कहा ऋषभानुपुरम गत्वा, आप ऋषभानुपुर चले जाओ, जहाँ पर ऋषभानु महाराज विराजमान है, वहाँ पर मेरी प्रियतमा अंतरंगा शक्ति राधा रानी विराजमान है, वहाँ पर तुम पत्थर बन जाओ। तुम देख सकते हैं आप, इतने सृष्टि के रचयिता, हम सब उनके पुत्र हैं, सब उनके बालक हैं, न केवल हम, सारे जीव जितने भी हैं, सर्प हैं, पक्षी है, मछली है, पेड़ है, जितनी भी योनियां हैं, 84 लक्ष योनियों में जितने अनंत जीव निवास करते हैं, वो सबके निर्माता वही है। और जितने भूखंड हैं, जितने पर्वत हैं, जितनी नदियां हैं, जितने भी लोक हैं, उनके निर्माणकर्ता भी वही हैं। कितना बड़ा पद है उनका, कितना बड़ा अधिकार है उनका, कितनी शक्ति भगवान ने उनको देके रखी है, हृदय के अंदर डायरेक्ट ज्ञान दिया उनको। हाँ, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंती यत सूर्या, श्रीमद भागवत का पहला श्लोक में कहा है कि डायरेक्टली प्रत्यक्ष भगवान ने उनके हृदय में चतुश्लोकी भागवत कहकर पूरा जो अनुभूति है, साक्षात्कार है, उसको प्रकट किया। ऐसे महान जीव अपना बड़ा अधिकार, इतना पद होने पर भी यहां पर पत्थर बने हुए, यही धाम की महिमा है। पत्थर बनने का मतलब क्या होता है? सब लोग उस पर चलते हैं, अपने पैर रखकर चलते हैं, ऊपर से टट्टी पेशाब भी करते हैं, गंदा भी करते हैं। हाँ, कितना न्यून स्थान है वो, किसी के पैरों के नीचे रहना कितना न्यून स्थान है वो। और हमारे सृष्टि के रचयिता जो हैं वो स्थान लेकर बैठे हैं, हम जैसे लोग पापी लोग भी ऊपर चढ़ते हैं। इसलिए यहाँ से जाने के पहले, पर्वत चढ़ने के पहले सबसे दंडवत करना चाहिए, ब्रह्मा जी का क्षमा मांगनी चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए, कृपा प्राप्ति की याचना करनी चाहिए, ऊपर जाकर फिर दंडवत करना चाहिए, उनकी मूर्ति वहां विराजमान है। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर रुके और इस तरह से ब्रह्माचल पर्वत नाम पड़ा उसका। राधा रानी के यहाँ प्रकट होने का एक कारण तो ये है, जब यहाँ पर कंस का आतंक मचा तो यहाँ पर लीला हुई, लेकिन एक दिव्य कारण और भी है जिसके कारण राधा रानी को आना पड़ा। वो ये है कि भगवान जब राधा रानी को निर्माण किए तो राधा रानी ने बहुत सारी गोपियों को, सखियों को निर्माण किया। तो उसमें एक नदी थी, एक सखी थी विरजा, जैसे मैं आपको बताया ना कि भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत जो है वो विरजा नदी के द्वारा विभाजित है, डिवाइड किया गया है। तो विरजा नदी एक बार भगवान राजा रानी के संग में बड़े आनंद को अनुभव कर रहे थे और दोनों एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए दिव्य आनंद को अनुभव कर रहे थे, तो उसमें अति आनंद का अष्टविकार के प्रभाव से राजा रानी बेहोश हो गई। तो कृष्ण भगवान उनको छोड़कर विरजा देवी के संग में चले गए। सभी देवियां राजा रानी को होश मिलाने के प्रयास में वहां रह गई और भगवान विरजा के कुंज में गए। सीतामा को उस कुंज के मुख पे रखा द्वारपाल के रूप में। सीतामा भगवान के सब अति प्रिय सखाएं, तो वो अंदर विरजा नदी के संग का, विरजा सखी के संग का अनुभव कर रहे थे और उतने में राजा रानी होश में आई। तो सखियों ने बताया कि वो चले गए। वो कहाँ चले गए? वो विरजा कुंज में गए। तो उनका दिव्य क्रोध जागृत हो गया, कैसे कैसे वो कर सकते हैं। तो वो तुरंत विरजा कुंज में जाना चाहती हैं। तो राजा रानी उस समय महावन में थी, गौलोक धाम का जो महावन है वहां पर थी। वहां से वो निकली, उनका रथ तैयार हुआ। उनका रथ का वर्णन ऐसा है कि वो रथ जो है वो सौ योजन ऊंचा था। एक योजन जो होता है, एक योजन वो 8 मील का होता है, ऐसे 100 योजन उसका रथ आकाश में ऊंचा था। 10 योजन यानी कि 80 मील उसका व्यास था, डायमीटर। हाँ, और उसमें राधा रानी की 63 करोड़ गोपियां प्रवेश कर गई। 63 करोड़ गोपियां जो है वो भी उनके साथ में आना चाहती थी। उसका और एक वर्णन ऐसा आता है कि उसमें 3 करोड़ कलश लगे हुए थे सौंदर्य के रूप में, कई झंडे लगे हुए थे, कई रत्न लगे हुए थे, उसके 1,00,000 पहिए थे और वो मन की गति से चलने वाला था। उसके अंदर 4,00,000 घंटाएं लगी हुई थी, सुंदर घंटा नाद रथ चलते हुए होना चाहिए। उसमें 1 करोड़ स्वर्ण के स्तंभ थे, पिलर्स शोभा बढ़ा रहे थे। 1,00,000 उसमें कमरे थे जो अलग अलग फूलों की मालती, पारिजात जैसे फूलों की शैया से सुसज्जित थे। उसमें 4,00,000 आईने थे सखियों को आनंद देने के लिए। लेकिन राजा रानी इस समय बहुत परेशान थी और सभी लोग मन की गति से तुरंत निकले और विरजा के कुंज में पहुंचे बाहर उसके। तो श्रीदामा ने उनको पूछा, आप क्यों आए हो यहाँ पर? तो वो बड़े गुस्से से श्रीदामा से कहती है कि हे दुष्ट व्यक्ति के सेवक, यहाँ से तुम दूर चले जाओ। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ प्रवेश नहीं कर सकती, ये निजी कुंज है, यहाँ पर सब लोग प्रवेश नहीं कर सकते। तो उन्होंने डंडा उठा के सबको रोका, तो सब गोपियों ने श्रीदामा को पकड़ के बाजू में कर दिया। तो यहाँ पर थोड़ा शोर मचा ना, यहाँ वहाँ शोर हो गया, बहस हो गई, बहुत सारा वार्तालाप है। वो बड़े क्रोध से राजा रानी कठोर शब्द उच्चारण कर रही है, श्रीदामा भी बड़े कठोर उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन सब किसी न किसी तरह से गोपियाँ उन पर हावी हो जाती है, तो बाजू में करती है और राजा रानी कुंज में प्रवेश करती है। इतने में सारा शोर सुनकर कृष्ण भगवान अंतर्धान हो जाते हैं और विरजा नदी, विरजा दो सखी है वो तुरंत नदी बन जाती है और जल के रूप में प्रवाहित होने लगती। तो राजा रानी देखती है कि यहाँ पर कृष्ण तो है नहीं और विरजा नदी बनी हुई है, तो दुखी होकर चली जाती है। कुछ देर बाद कृष्ण जो है वो विरजा के विरह में आ जाते हैं कि विरजा देवी आप कहाँ चले गई, मैं आपके विरह में व्याकुल हूँ। उसके किनारे में आके बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं। तो विरजा देवी प्रकट हो जाती हैं और फिर वो उनके साथ संग करते हैं और उस संग में कृष्ण भगवान विरजा के गर्भ में 7 पुत्र उत्पन्न करते हैं। ऐसे कहा गया कि 100 वर्ष के बाद में उनको गर्भावस्था के बाद में 7 पुत्रों की प्राप्ति होती है और विरजा के साथ भगवान आनंद लेते रहते हैं। तो एक बार जब विरजा के साथ बैठे थे तो 7वां पुत्र जो है वो बड़ा त्रस्त होकर आता है, माता माता मुझे 6 भाई मेरे परेशान कर रहे हैं, आप मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। तो विरजा नदी जो है, विरजा जो देवी है वो उनको देखने लगी क्या हुआ। तो उतने में कृष्ण भगवान उठ के चले गए और राधा रानी के कुंज में चले गए और राधा रानी के साथ संग करने लगे, क्योंकि सोचे कि अभी बच्चे परेशान हैं तो माता को बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, मैं बाद में आऊँगा। तो जब बच्चों को सांत्वना करने लगी और देखा कि कृष्ण चले गए तो बड़ी क्रोधित हो गई वो, उन्होंने अपने बच्चों को शाप दे दिया कि तुम सब लोग एक दूसरे से अलग हो जाओगे और पृथ्वी पर जाओगे जहाँ पर जम्बूद्वीप है, जहाँ पर भौतिक जगत है, वहाँ पर सागर बन के रहोगे। इस तरह से वो सात पुत्र जो विरजा के हैं वो इस पृथ्वी पर यानी भौतिक जगत में आकर जम्बूद्वीप में सात सागर बने, वो भी अलग अलग, एक एक द्वीप उनको अलग करता रहा, दो सागर एक में बीच में द्वीप। तो उनके नाम ऐसे हैं, जो सातवां पुत्र है वो हमारे पास है बम्बई में, मतलब पृथ्वी पर, सॉल्ट ओशन, लवण सागर कहते हैं उसको, जो इस पृथ्वी पर विराजमान है, बाकी सब अन्य लोकों में विभाजित हो गए। एक है इक्षु सागर, जो शुगर केन होता है ना, गन्ने का रस, उसका सागर है। हाँ, अच्छा लगेगा आपको वहाँ जाने के लिए। एक सागर है सुरा समुद्र, यानी कि शराब मदिरा का सागर है। एक सागर है घृत सागर, यानी कि घी का सागर। एक है दधि सागर, यानी दही का सागर। एक है क्षीर सागर, यानी कि दूध का सागर। और एक है स्वाद उदक सागर, यानी कि मीठे जल का सागर। इस तरह से ये सातों द्वीप, सातों सागर जो है वो सात द्वीपों से विभाजित होकर एक दूसरे का विरह और माता का विरह दोनों अनुभव करने लगे। तो फिर जो विरजा देवी थी वो बड़ी दुखी हो गई, उनको पश्चाताप हुआ कि मैंने क्रोध किया, अपने बच्चों को शाप दे दिया, वो पृथ्वी पर चले गए, भौतिक लोक में चले गए, तो वो भी दुखी हो गई। तो उसको सांत्वना करने के लिए फिर भगवान कृष्ण उनको मिलने आए, बड़ी रो रही थी वो, उनको सांत्वना किया कि मेरी लीला है, मेरी इच्छा से गए हैं, ये आगे जाके सेवा करेंगे, आप चिंतित मत होना। तो फिर राधा रानी को पता चला कि ये विरजा के साथ में है, तो फिर वो वहाँ पर आने लगी। फिर सीतामा वहाँ खड़े हैं और फिर उनका बहुत भयंकर डिस्कशन हो गया। राधा रानी ने कठोर शब्द कहे कृष्ण के प्रति और सीतामा ने भी बहुत जोरदार वार्तालाप किया उनके साथ में। उसका परिणाम ये हुआ कि राधा रानी ने शाप दे दिया सीतामा को कि जाओ तुम पृथ्वी पर जाकर राक्षस बनो। तो उनको भी गुस्सा आ गया, वो उन्होंने कहा तुम भी पृथ्वी पर जाओगी और भौतिक दुनिया में जन्म लोगी और 100 वर्ष तक तुम्हारे प्रियतम से विरह में रहोगी। वहां पर कृष्ण भगवान आए, उनका क्या हुआ? तो ऐसे ऐसे हुआ, दोनों को पश्चाताप हुआ कि दोनों ने स्त्री को शाप दिया। उनका कोई चिंता मत करो, हम सब इसको दिव्य रूप में रूपांतरित कर देंगे। तो सुदामा को भगवान ने कहा कि तुम शंखचूड के नाम से पृथ्वी पर जन्म लोगे, तुम्हारा विवाह तुलसी देवी के साथ होगा, वृंदा देवी के साथ में, और 500 युग तक तुम यहाँ रहोगे। वहाँ तो समय का प्रभाव नहीं है, यहाँ पर समय का प्रभाव है ना, यहाँ कैलकुलेशन है, 1 साल 2 साल फिर 1 युग फिर 1 कल्प होता है, फिर 100 कल्प होते हैं, 1000 कल्प होते हैं। उन्होंने कहा 500 युगों तक तुम यहाँ पर रहोगे राक्षस के रूप में, फिर शिवजी के त्रिशूल से तुम्हारा वध होगा, फिर तुम मेरे धाम में फिर लौट के आओगे। और राधा रानी को कहा कि अभी मैं जब जा ही रहा हूँ तो तुम्हें भी मेरे संग में आना होगा, कुछ साल हम साथ में रहेंगे, ऐसे कहते हैं ना कि 1 decade ऑफ एसोसिएशन 1 century ऑफ सेपरेशन। तो वो सुदामा का शाप था उनको, इसलिए यहाँ पर 10 वर्ष 3 महीने तक साथ में रहे और 100 वर्ष तक, करीब करीब 112 साल तक उनका विरह रहा। और फिर वो भगवान ने दंत वक्र को मारने के पश्चात अति उत्कट विरह में जो शरीर छोड़ने वाली थी सब गोपियाँ राधा रानी और सब ब्रजवासी माता पिता सब ग्वाल बाल सब गैया सबको दंत वक्र को मारने के बाद में भगवान ने फिर ब्रज में प्रवेश किया। और जब उनकी विरह का अनुभव अति उत्कट सीमा पर पहुंच गया था तभी उन्होंने उनको सब लोगों को लेकर भगवान गौलोक धाम चले गए और सबको गौलोक उन्होंने पहुँचाया। और फिर वापस आकर फिर द्वारका में फिर उनकी यादवों की लीला हुई, यादव फिर सब नष्ट हो गए और फिर भगवान भी अंतर्धान हो गए। तो ये राधा रानी क्यों आई इसका कथा है, और फिर वो पृथ्वी पर कैसे आई वो हम आपको कल बताएंगे। हरे कृष्णा। तो ये धाम जो है इसका दिव्य इतिहास है जो हम आपको कल बताएंगे। ये समझने वाली बात है कि ये सब हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि कभी कभी कैसा होता है कि हम लोग, कुछ लोग आप में से यहाँ पर बहुत बार आ गए होंगे, अरे सब पता है हमको यहाँ पर, अरे यहाँ से 5 मिनट के अंदर पर श्री जी का मंदिर है, यहाँ से पीली पोखर है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर वो है, यहाँ पर कैंप होता है, यहाँ पर बरेली में हमारा ओपीडी लगता है। ऐसे ही कहते हैं ना, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेंट। ऐसे बहुत बार आ गए तो आपको लगेगा हमको सब पता है। तो कुछ कुछ ऐसा पता होने के बाद में इसका जो महात्म्य है इसको हम भूल सकते हैं, इसकी जो दिव्यता है उसको भूल सकते हैं। जो नए आए हैं तो एकदम ऐसे भाव में रहते हैं कि हमारे हाथ से कोई अपराध नहीं होना चाहिए, हमें पूर्णता यहाँ पर भगवान के ध्यान में रहना चाहिए, हमें यहाँ पर हर समय भगवान के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, राधा रानी को पुकारना चाहिए, सब ब्रजवासियों को संतुष्ट करना चाहिए, उसके माध्यम से राधा रानी संतुष्ट हो जाएगी। ये सब दिव्य बातें हृदय में ऐसी भावना में रहती है, एकदम बेस्ट कंडीशन में रहते हैं जो पहली बार आए हैं। लेकिन जो कई बार आ चुके हैं, हो सकता है उनका मन थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाए, उनको लगेगा कि क्या ठीक है, हर साल आते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन हर साल जब आते हैं तो अधिक अनुभूति के साथ में आना चाहिए, अधिक उत्कट भावना से आना चाहिए, अधिक तीव्र भावना से आना चाहिए। पिछले साल में जो भावना से आए थे उससे अभी और तीव्र भावना में आएंगे। जो गलतियां पिछले साल हुई थी वो अगले साल नहीं करेंगे। हर कदम पर, हर क्षण में जो सेवा प्राप्त हुई है उसके लिए राजा रानी को धन्यवाद देंगे, गुरु महाराज को धन्यवाद देंगे, भक्तों को धन्यवाद देंगे, इन्होंने इतनी सारी व्यवस्था करके आपको सेवा करने का मौका दिया। तो ये रज जो है, जहां पर स्वयं कृष्ण भगवान उसको अपने चरणों में लगाते हैं, अपने सर पे लगाते हैं, राजा रानी की खुशी चाहते हैं, उस जगह पर हम लोग बैठे हुए हैं। न जाने कितने अनंत रज के कण हमारे शरीर में गिरते होंगे, एक एक कण के स्पर्श के साथ में अनंत जन्मों के संचित जो है वो कष्ट देने वाले हैं, वो नष्ट होते रहते हैं। एक एक जल के घूंट को आप पीते हो, वे अनंत कर्म नष्ट हो जाते हैं। एक एक प्रसाद का ग्रास आप खाते हो, उससे अनंत जन्मों के कष्ट नष्ट हो जाते हैं। पीड़ा, वेदना, यातना, कष्ट जो है वो सब नष्ट हो जाता है। और साथ साथ में एक ही साथ में जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है, और एक ही साथ में कृष्ण प्रेम की ज्योत भी हृदय में जलती है, प्रज्वलित होती है, निर्माण होता है उसका। पतित से पतित पत्थर दिल भी हृदय का व्यक्ति जो है वो यहाँ पर आने से उसको पता भी नहीं लगता होगा, लेकिन फिर भी उसके हृदय में वो प्रेम का बीज भगवान बोते हैं, राधा रानी बोती हैं। यहीं से जितना भी रस का प्रकाश हुआ है वो यहीं से हुआ है, राधा रानी के चरणों से सब रस का विकास होता है। और सूर्य 84 कोस जो ब्रज है वहाँ पर वो प्रकाशित होता है, उसका वृद्धि होती है, लेकिन उद्गम यहाँ पर है। यहीं पर राधा रानी जब चलती हैं तो उनके घुंघरू के आवाज़ से वेदों का निर्माण होता है। वेदों के श्लोक जो है वो राधा रानी के घुंघरू की आवाज़ है, उस ध्वनि से वेदों की उत्पत्ति होती है, और सब देवता लोग उससे ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं, ऋषि मुनि ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। ये कोई साधारण जगह नहीं है, यहाँ पर स्वयं अखिल ब्रह्मांड नायक गोलोकेश्वर जो है दास बनकर यहाँ प्रवेश करते हैं, स्वयं उनका संग प्राप्त करने के लिए सखी बन जाते हैं, अनंत बार श्यामा सखी बन जाते हैं, कभी चूड़ी बेचने वाली बन जाते हैं, कभी ब्रह्मचारी बन जाते हैं, कभी दवाई देने वाले वैद्य वैद्यनी बन जाते हैं, कभी फूल बेचने वाली बन जाते हैं, अनेक छद्म धारण करते हैं वो केवल उनकी प्रेम के लिए। छद्म लीला कहते हैं, मतलब नॉट डायरेक्ट लीला, उसमें कुछ टेढ़ा मेढ़ा काम होता है, वो केवल यहाँ पर होता है। वो छद्म लीला ब्रज में और कहीं नहीं होती है, केवल वृंदावन में, जहाँ पर गोवर्धन, जमुना, नंदगांव, बरसाना, जावट बसा हुआ है, इसी क्षेत्र पर वो छद्म लीला होती है। यहाँ पर अलग अलग चटपटे रूप धारण करके भगवान श्री जी की कृपा चाहते हैं, उनका संग चाहते हैं, उनको आनंद देना चाहते हैं। तो उसके अंतःपुर में हम लोग आए हैं। जैसे किसी का घर होता है ना, उसमें हॉल भी होता है, उसमें बरामदा भी होता है, उसमें बैठने की जगह भी होती है, उसमें रसोई भी होती है, सोने की जगह भी होती है, लेकिन सोने की जगह पर सब लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जो सब खास मित्र है वो शयन गृह में प्रवेश कर सकते हैं, प्राइवेट उनका हिस्सा है वो, जहाँ पर वो केवल खुद अपने निजी जो रिश्तेदार हैं उनके साथ में बैठते हैं। तो वैसे ब्रजभूमि अगर भगवान का घर है तो बरसाना नंदगांव उनका अंतःपुर है, जहाँ पर वो केवल अपने विशेष भक्तों को जन्म देते हैं और आप जैसे विशेष भक्तों को प्रवेश देते हैं कुछ समय के लिए क्यों ना, और अपने धाम का परिचय देते हैं कि ये मेरा घर है, यहाँ पर हमने ये किया था, यहाँ पर हमने वो किया था, यहाँ पर हमने ये छद्म धारण किया था, यहाँ पर कृष्ण भगवान ने ऐसे किया था, वैसे किया था। ना पर कोई राक्षस प्रवेश नहीं कर सकता है, उसकी भी कहानी कल बताएंगे कैसे उन्होंने राक्षसों को यहाँ पर प्रवेश बंद कर दिया। क्योंकि यहाँ पर राधा और कृष्ण जो है अपने हृदय के अंदर का जो रस है उसका आस्वादन करते हैं, और माता और पिता अपने दिव्य वात्सल्य का अनुभूति यहाँ पर भगवान के प्रति करते हैं। यहाँ पर सब जो है वो सब माधुर्य से भरा हुआ है, यहाँ का दास्य भी है, साख्य भी है, वात्सल्य भी है, सब माधुर्य के प्रभाव में है, इसलिए वो दिव्य है। इसलिए अर्जुन का प्रेम जो है सखा के रूप में अलग है, और जो सुदामा सुदामा का प्रेम है वो अलग है, उसमें वो भगवत भगवान भगवान होने की अनुभूति नहीं है, अपने को एक मित्र मानते हैं, उनको उनके साथ में डांटते हैं, उनको कंधे पर चढ़ जाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। ऐसी दिव्य भूमि है ये, जहाँ पर हमें अभी इस समय कलयुग के इस 28वें युग में, कलयुग जो बाद में आया है उसके महाप्रभु चैतन्य के पश्चात 500 वर्ष के बाद में कलयुग जब बिगड़ता जा रहा है, ऐसे ह्रास होते हुए कलयुग में सद्गुण नष्ट हो रहे हैं, समय नष्ट हो रहा है, हाँ स्मृति नष्ट हो रही है, आयु नष्ट हो रही है, सब सदवर्तन जो है वो नष्ट हो रहा है, ऐसे समय पर हमको यहाँ पर अपने हृदय की अपनी आत्मा की उन्नति करने के लिए भगवान ने प्रवेश दिया है। कितने बड़े भाग्य की बात है, कदम कदम पर क्षण क्षण पर हमको धन्यवाद देना चाहिए। इसलिए हम इस धाम का महात्म्य आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। जय जय श्री राधे। श्याम सब लोग कल समय पर यहाँ पर उपस्थित रहना, ठीक 7:30 बजे आगे की कथा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।